हॉट अंकल फक स्टोरी में मैं अपनी सहेली के पिता को अपने साथ सेक्स करने के लिए उकसा रही हूँ। कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि मैं ब्लू फिल्म देखते देखते अपने ही बदन के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी मुनिया में से कुछ गीला गीला पदार्थ टपक रहा है। ऐसा लगा कि जैसे जीवन के सबसे बड़े सुख की प्राप्ति हो गई हो। अब आगे, मैं वहाँ से उठी, बाथरूम में जाकर अपनी मुनिया को धोकर साफ किया और फिर से अपने बिस्तर में लेट गई। मैं फिर से ब्लू फिल्म देखने लगी। फिर से वही सब दृश्य सामने आने लगे। अंकल जैसा दिखने वाला व्यक्ति फर्श पर लेटा है और आंटी जैसी दिखने वाली महिला उस व्यक्ति के मोटे लिंग को पकड़ कर उसके ऊपर अपनी मुनिया रख कर ऊपर बैठी हुई है और पूरा का पूरा लिंग आंटी की मुनिया में चला गया है। मैं कल रात और आज दिन पहले अंकल आंटी के दृश्य को याद करके सोचने लगी कि अंकल का लिंग कैसा है। मैं उसको देखना चाहती थी तो मैं जुगत लड़ाने लगी। यह तो मुझे आभास हो गया था कि अंकल और आंटी बहुत रोमांटिक है और हम दोनों की अनुपस्थिति में सारा दिन हमारे फ्लैट में बस ये दोनों की काम क्रीड़ा ही चलती रहती है। परंतु यह भी मुझे मालूम था कि अगर मैं कल ऑफिस नहीं गई और घर रुक गई तो ये लोग सब बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठने के बाद मैंने ऑफिस थोड़ी देर से जाने का निर्णय लिया और पूर्वी का इंतज़ार करने लगी। 9 बजे पूर्वी मेरे कमरे में आई और पूछा, दीदी ऑफिस नहीं चल रहा क्या? मैंने कहा, बाबू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले डॉक्टर के पास जाऊंगी, अभी तू चली जा, हम सीधे ऑफिस में ही मिलते हैं। पूर्वी मुझे बाय बोल कर चली गई और अब मैं अपने दिमाग में कुछ अजीब अजीब जुगत लगा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक छोटी सी निक्कर निकाली जिसमें मेरी पूरी टांगें दिखाई दें और ऊपर बहुत झीना सा सैंडो पहना जिसमें दोनों निपल साफ दिख रहे थे। मैं जानबूझकर बाहर निकल आई। अंकल और आंटी अपने कमरे में थे। मैं सोचने लगी कैसे उन दोनों से मिला जाए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने उन लोगों का कमरा खटखटाया तो आंटी वहीं नाइटी पहने हुए बाहर आ गई। अंदर की तरफ झांक कर देखा, अंकल बिस्तर पर पड़े थे और चादर ओढ़ रखी थी। जहां तक उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी वहां से ऊपर का बदन उनका आज भी नग्न ही था। अब चादर के नीचे उन्होंने कुछ पहना था या नहीं ये मुझे नहीं पता। आंटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं जानबूझकर दरवाजे को धक्का देते हुए कमरे के अंदर चली गई और बिस्तर पर बैठ गई। अंकल ने पूछा, तबीयत कैसी है बेटा? मैंने जवाब दिया, अंकल कल से बहुत बेहरत है पर मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, वहीं कहीं बाहर घूम आऊँगी। आंटी ने कहा, ठीक है मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अंकल बोले, तुम लोग जाओ मैं आराम करूँगा। अंकल की ये बात सुनकर मेरी योजना फुस हो गई। आंटी ने कहा, तुम तैयार हो जाओ मैं नाश्ता बनाती हूँ, और वो किचन की तरफ चली गई। इधर मैं देखना चाहती थी अंकल ने चादर के नीचे कुछ पहन भी रखा है या वो आज भी बिल्कुल नंगे ही हैं। मैंने अंकल को बोला, चलो अंकल आप तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अंकल ने कहा, तुम अपने कमरे में चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपके साथ ही चलूँगी, जल्दी से बिस्तर छोड़ो और तैयार हो जाओ। पर अंकल मुझे कमरे में भेजना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी कि अंकल ने चादर के नीचे कुछ भी नहीं पहना है। हे भगवान कितना उत्साह है इन दोनों में, मैं सोचने लगी। मैंने भी जिद कर ली, नहीं अंकल मैं नहीं जाऊंगी, आप उठ जाओ। ये बोलकर मैं जानबूझकर अंकल की तरफ इस तरह झुकी कि मेरी झीनी सी सैंडो के अंदर से निप्पल अंकल को दिखाई दें। हालांकि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रही थी वो सही था या गलत, पर अंदर से मेरा मन था कि जैसे मैंने अंकल के नग्न बदन को देखा है ऐसे ही अंकल भी मेरे नग्न बदन को देखें। मैं जानबूझकर अंकल की तरफ इस अंदाज से झुकी और अंकल की नज़रें मुझ पर पड़ी भी। उनकी निगाहें सीधे मेरे निप्पल तक चली गई। उन्होंने पैर नीचे रखा तो मुझे एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है और मैं उनके कमरे में मैं बैठी हूँ। तो उन्होंने तुरंत वो पैर फिर से चादर के अंदर डाल लिया। अब अंकल ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही चादर को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटा और वॉशरूम चले गए। मैं अपने द्वारा की गई शरारत से हंस पड़ी। आंटी नाश्ता बनाने लगी, मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होकर बाहर आ गई। मैं जानबूझकर मिनी पहनी, मुझे अंकल के साथ जाना अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया और नीचे आकर डॉक्टर के पास चले गए। ऑटो में भी मैं अंकल से चिपक कर बैठी थी, हालांकि अंकल ने बड़े संतुलित तरीके से सब कुछ संभाल लिया था। डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेने के बाद मैंने कहा, अंकल आज बाहर तो निकले हैं मुझे अपने लिए कुछ सामान भी लेना है। अंकल ने कहा, हाँ बेटा तुमको जो लेना है ले लो। मैं वहीं से एक लॉन्ड्री शोरूम में चली गई। अंकल बाहर ही खड़े थे। मैंने कहा, अंकल इतनी गर्मी है, अंदर आ जाइए। पर अंकल शायद मुझसे एक संयमित दूरी बनाकर रखना चाह रहे थे। वो बोले, बेटा जो तुमको लेना है ले लो, मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझ पर एक अजीब सा जुनून सवार था। मैं अंकल को हाथ पकड़कर शोरूम के अंदर ले गई और मालिक से अपने लिए ब्रा मांगी। अंकल ने एक पल को मेरी तरफ नज़रें उठाकर घूरा, पर उठकर तुरंत शोरूम के बाहर चले गए। मैं भी अंकल के पीछे पीछे बाहर आ गई और अंकल से फिर से शोरूम के अंदर बैठने की ज़िद करने लगी। अंकल ने मुझसे गुस्से में कहा, बेटा अपनी हद में रहो और जो ख़रीदना है जल्दी से खरीद कर बाहर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने खुद को संयमित करते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं, मुझे जो लेना होगा बाद में ले लूँगी, अभी कुछ नहीं लेना, चलते हैं। अब अंकल ने अनमना सा मुँह बनाते हुए मेरी तरफ़ देखा और कहा, ये कोई तरीका नहीं है, जो लेना है अंदर जाकर ले लो। मैंने भी मना कर दिया। अंकल ने फिर से मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से घूरा और बोले, अच्छा चल अंदर ही बैठता हूँ, जो भी लेना है जल्दी लेना। वो मेरे साथ फिर से शोरूम के अंदर आ गए। मैंने वहाँ से अपनी पसंद की दो ब्रा खरीदी और अंकल के साथ बाहर आ गई। बाहर आते ही अंकल ने गुस्से से मुझसे पूछा, श्रुति इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो तुम? मैंने बिंदास जवाब दिया, बस अंकल मुझे आपका साथ अच्छा लग रहा है। अंकल ने जवाब दिया, बेटा किसी का भी साथ एंजॉय करना अच्छी बात होती है, पर लिमिट में। मैंने भी कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अंकल को आश्वस्त करने की कोशिश की और बाहर से अपने लिए ऑटो देखने लगी, पर मेरा घर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। मैं अंकल के साथ कुछ और समय बिताना चाहती थी और चाहती थी कि अंकल का मूड भी कुछ ठीक हो जाए। मैंने अंकल को पास के एक मॉल में चलने को कहा। थोड़ी नानुकर के बाद वो तैयार हो गए। मॉल में जाकर हमने हल्का फुल्का खाना खाया और कुछ शॉपिंग की। मैंने अंकल के लिए अपनी तरफ से कमीज़ भी खरीदी। जब अंकल का मूड अच्छा हुआ तो हम वहाँ से घर को चल दिए। घर जाने के बाद मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई, पर मेरे दिमाग पर तो जैसे अंकल के नंगे बदन का नशा चढ़ चुका था। ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, हालांकि पूर्वी का काम अभी भी नहीं निपटा था, परंतु मैंने अपना काम तेज़ी से निपटाया और घर पहुंच गई। मैंने अपनी चाबी से दबे पांव दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंची तो देखा आंटी घर पर नहीं थी। अंकल वही नग्नावस्था में बिस्तर पर लेटे थे और सामने टीवी पर ब्लू फिल्म लगी हुई थी। जैसे ही मुझे आभास हुआ कि आंटी घर पर नहीं है, मैं झटके से दरवाज़ा खोलकर अंकल के कमरे में चली गई। अंकल मुझे देखकर अवाक रह गए और टीवी का रिमोट ढूंढने लगे। मेरी नज़रें टीवी पर पड़ी और अंकल पर भी। मैं मुस्कुराई और आगे बढ़कर टीवी का स्विच बंद कर दिया। अंकल ने कहा, अचानक आ गई, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कोई जवाब दिए बिना बिस्तर में अंकल की चादर में घुस गई। अंकल काफ़ी असहज हो गए, चूँकि वो चादर के अंदर नंगे थे तो एकदम भाग भी नहीं सकते थे। उन्होंने चादर को खींचा, पर मैंने भी सोच लिया था कि इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने ज़बरदस्ती खींचकर चादर को उठा और अंकल के बराबर में ही घुस गई। जैसे ही मेरा हाथ चादर के अंदर गया, अंकल के पूरे कड़क लिंग से टकरा गया। अंकल ने चादर के अंदर अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मैं अपने हाथ की मजबूत पकड़ से उनके प्रेम यंत्र को पकड़ चुकी थी। अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, श्रुति तुम बच्ची हो, मैं तुम्हारा अंकल। मैंने अंकल की नंगी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकल मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद आप वापस जाने वाले हैं, क्या आप नहीं चाहते कि मुझे मेरी खुशियाँ देकर जाएं? और ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र के लोगों की कमी है, जो सुख आपके साथ मिल रहा है वो मुझे आपके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अंकल शायद इस सब के लिए तैयार नहीं थे, वो हटना चाहते थे। मैंने अपने हाथ से अंकल के काम दंड को सहलाना शुरू कर दिया। अंकल की मनोदशा कैसी थी मैं महसूस कर रही थी। वे उस समय का सुख आनंद छोड़ना नहीं चाहते थे और मेरे साथ कुछ करना भी नहीं चाहते थे। मैंने अपनी जीभ से अंकल की छाती और उनके चुच्चू को चाटना शुरू कर दिया। अंकल का विरोध पहले के मुकाबले कम हो गया। बस वो यही कह रहे थे, श्रुति समझा करो, ये सब ठीक नहीं है। मैंने तो जैसे अपने कानों में रुई डाल रखी थी, मैं कुछ सुनने की स्थिति में ही नहीं थी। लगातार अंकल के बदन को सहला रही थी। धीरे धीरे अंकल का विरोध खत्म होने लगा, फिर भी वो मेरा साथ देने लगी। वो सिर्फ आँख बंद करके बिस्तर पर पड़े हुए थे। जब मैंने देखा कि अंकल बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे तो मैंने चादर को हटा दिया। वाह, क्या बेहतरीन लिंग था अंकल का, सीधा तना हुआ कमरे की छत को ताक रहा था, बिल्कुल झंडा रोहण की अवस्था में। उसको देखने की मेरी तमन्ना 2 दिन बाद पूरी हुई। अंकल आंख बंद करके बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। मैंने उनके लिंग के ऊपरी हिस्से पर बने छोटे से मुंह को खोला और अपनी एक उंगली से उसको सहलाना शुरू कर दिया। अंकल को जैसे बहुत ज़ोरदार करंट लगा, उनका पूरा शरीर हिल गया। उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। वो मुझसे बोले, श्रुति तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? मैंने कहा, अंकल ऐसा नहीं है कि ब्लू फिल्म देखना सिर्फ आपको ही आता है। अंकल मुस्कुराए और बोले, या तो ये सब मत करो या फिर मुझे अंकल मत कहो। मैंने जवाब दिया, अच्छा राजीव कहूँ तो चलेगा? अंकल ने कहा हाँ। मैंने कहा ओके राजीव। अंकल फिर से मुस्कुराए और बोले, प्री श्रुति मैं चाहूँगा कि तुम अब रुक जाओ। मैंने पलट कर जवाब देने की बजाय अंकल के उस कड़क लंड को अपने नाजुक होठों से लगा लिया। अब तो जैसे अंकल का विरोध सहमति में बदल चुका था। लेटे लेटे ही अपने चूतड़ ऊपर उछाल कर अपने उस प्रेम दंड को मेरे होठों के अंदर उतार रहे थे। मैं भी उस पल अपने सारे वस्त्र उतारना चाहती थी, पर मैं एक पल के लिए भी अंकल को छोड़ना नहीं चाहती थी कि कहीं अंकल का मूड फिर से न बदल जाए। मैंने एक हाथ से अंकल की दोनों गोटियों को सहलाना शुरू कर दिया और अब तो जैसे अंकल पर मेरा जादू असर करने लगा। अंकल ने हाथ बढ़ाकर मेरी टॉप के अंदर पीठ को सहलाना शुरू कर दिया और ऊपर हाथ पहुँचते पहुँचते मेरी ब्रा तक पहुँच गया। मेरे मुंह से सिसकारियाँ निकल रही थी। अंकल बोले, ये वही ब्रा है ना जो तुमने आज खरीदी थी? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो बोले, मुझे उसी समय तुम्हारे इरादे समझ जाने चाहिए थे। अंकल के लिंग को तेज़ी से मैं चाटने लगी। अंकल भी फिर जोश में आ गए। उन्होंने मेरी टी शर्ट को ऊपर करके ब्रा को खोल दिया और मेरे निप्पलों को सहलाने लगे। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे भी वक्त यहीं रुक जाए। मैंने खुद के अलावा आज पहली बार कोई दूसरा मेरे निप्पल को सहला रहा था। मेरा बदन अकड़ने लगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी लगी। अंकल और मैंने दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। मैं तेज़ी से अपने कपड़े सही किए और दरवाजे पर पहुंची। शायद आंटी थी जो मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर लौटी थी। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। बाकी की कहानी अगले भाग में बताऊंगी। एंजॉय करिए।